معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے کتاب عمران سیریز پر اسرار دشمن. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز روبا سرور، پیشکش محمد اظہر، مصنف ایم اے راحت. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. تیز بارش ہو رہی تھی، موسم کئی دن سے خراب تھا، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ کا سارا نظام درم برم تھا. کبھی کبھی خراب موسم کی وجہ سے کسی فلائٹ کو کہیں اور بھیجنا پڑتا تھا، لیکن بیرون ملک سے آنے والی فلائٹ کے لیے خصوصی انتظام کرنے پڑے تھے. اس وقت بھی دہلی میں سے آنے والی طیارے کو بڑی احتیاط سے نیچے اتارنا پڑا تھا. عملہ مستعد تھا، پھر تیاری میں مسافر ہینگر ٹرمینل سے گزر کر کسی کسٹم آفس پہنچ گئے اور اپنے سامان کا انتظام کرنے لگے، جسے برق رفتاری سے کسٹم آفس پہنچنا دیا گیا. کسٹم کا عملہ سامان کی جانچ پڑتال کرنے لگا. مسافروں میں ملکی اور غیر ملکی دونوں طرح کے لوگ تھے، خواتین بھی مرد بھی. وہ دراز اقامت شخص تھری پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چوڑے بارڈر کا فلیٹ ہیٹ سر پر پہنے ہوئے تھا، جس کا اگلا سرا چہرے پر جھکا ہوا تھا، جس سے آدھا چہرہ چھپ گیا تھا، باقی آدھے چہرے پر گھنی مونچھیں اور فرنج کٹ داڑھی نظر آ رہی تھی. دوسرے مسافروں کی طرح وہ بھی شیشے کی دیواروں کے دوسری طرف دیکھ رہا تھا. کسٹم کا عملہ اپنے کام میں مصروف تھا. پھر ایک بہت بڑا سوٹ کیس عملے کے سامنے پہنچا. اسی وقت پر اسرار مسافر سوٹ کیس کے سامنے جا کھڑا ہوا. سوٹ کیس غیر معمولی طور پر بڑا تھا، لیکن اپنے حجم کے باوجود وہ ہلکا تھا. چیکنگ آفیسر نے سامنے کھڑے مسافر کو دیکھا. آپ کا ہے؟ اس نے پوچھا. جی آفیسر، مسافر نے جواب دیا. کیا ہے اس میں؟ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، مسافر بولا. کھولیے اسے، آفیسر نے کہا. میں نے کہا نا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قابل گرفت ہو، آپ پلیز اسے کھولیے. آفیسر، آپ کیوں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اسے ماسک لگائیے اور مجھے جانے دیجیے، مسافر بولا. کسٹم آفیسر نے غور کر اسے دیکھا اور بولا، میں نے آپ سے جو کہا ہے وہ کیجیے. مجھ سے کیوں ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اسے کھول دیں تاکہ ہماری باری آئے، ساتھ کھڑے ہوئے ایک مقامی شخص نے کہا، جو باہر ہونے والی بارش سے پریشان ہو رہا تھا. اوکے ٹھیک ہے، مسافر نے اپنے لباس سے چابی نکالی اور پھر سوٹ کیس سے لاک کھول دیے. آفیسر نے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھایا اور پھر گھبرا کر پیچھے کو ہو گیا. سوٹ کیس میں چھوٹی چھوٹی بے شمار کھوپڑیاں بھری ہوئی تھی، انسانی کھوپڑیاں جو عام انسانی کھوپڑیوں کے سائز سے چھوٹی تھی. یہ کیا ہے؟ کسٹم آفیسر نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا. یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا، مسافر نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا. یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے. دیکھیے کسٹم آفیسر، آپ نے کھوپڑیوں کی شان میں کوئی گستاخی کی تو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. گستاخی؟ کسٹم آفیسر نے خود کو سنبھال کر کہا. ہاں، یہ اس قدر عظیم کھوپڑیاں ہیں کہ آپ کی سیکنڈ ہینڈ کھوپڑی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. آپ مسخرے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں، بلکہ یہ کوشش آپ کر رہے ہیں. ایسی کسی چیز کو لانے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ نقلی کھوپڑیاں بھی ہیں تو میں انہیں لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. آپ صورت سے تو بے وقوف نظر آتے ہیں، लेकिन जरा वो कहानी का बेवकूफ है, ये इंसानी खोपड़ियां हैं, 100% ही इंसानी। अगर आपकी जनरल नॉलेज कुछ भी नहीं है तो मैं बताऊं, अफ्रीका एक कबीला अजीब और पालिक की खोपड़ियों को एक खास तरीके से पक्का कर छोटा कर लेते हैं और फिर इन्हें यादगार के तौर पर अपने पास रखते हैं। ये इसी प्रोसेस पर छोटी की हुई खोपड़ियां हैं और आप इन्हें सूटकेस में भरे फिर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन क्यों, ये आपके अकल में नहीं आएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, जानते हैं ये किसकी खोपड़ी है? ये फ्रॉन्टेशन चर्चल की खोपड़ी है और ये जनरल मिटंगरी की आवाज ये आइन फटानन की है। इनमें हर खोपड़ी इस कदर कीमती है कि आप खुद को बेच कर भी इसकी कीमत का तयन नहीं कर सकते। एक मिनट में इन मौजूद खोपड़ियों को थापूस दिए देता हूँ, कस्टम ऑफिसर ने इजाई हुई आवाज में कहा। बंद कर रहा हूँ इन्हें, कि आप जैसे अहमक आदमी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जी जी जी, एक मिनट। इंस्पेक्टर इशारे से दौड़ खड़े हुए पुलिस ऑफिसर को बुला चुका था, जो फौरन ही चार कांस्टेबलों के साथ वहां पहुंच गया। इससे करीब आकर कहा, क्या बात है, जरा मुलाहिजा से फरमाइए, ये खोपड़ियों के सौदागर, ये मौजूद खोपड़ियां लिए सफर कर रहे थे। खोपड़ियां? जी हाँ, पुलिस ऑफिसर ने झांक कर सूटकेस में भरी खोपड़ियों को देखा और फिर अजीब सी निगाहों से इस शख्स को। ये सूटकेस आपका है? इस पागलखाने में मुझे किस किस की बकवास का जवाब देना पड़ेगा? मिस्टर, ये सूटकेस आपका है? पुलिस ऑफिसर ने इजाई हुई आवाज में पूछा। जी हाँ। और ये खोपड़ियां कैसी हैं? क्या आप प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली किसी फिल्म के ट्रेवलिंग एजेंट हैं? आपकी जहानत इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? ऑफिसर, मैं इन्हें बता चुका हूँ कि दुनिया के मौजूद तरीन लोगों की खोपड़ियां हैं, जिन्हें मैंने निर्जाने कैसे कैसे हासिल किया है, कहीं इनकी कब्रों में सुरंग बनाकर और कहीं इनके ताबूत खोलकर। फिर मैंने इन पर इस कदर मेहनत की है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब मैंने इन्हें क्या बना दिया है ये भी आप नहीं सोच सकते। अब हम आपको जो बनाएंगे वो आप भी नहीं सोच सकते। सूटकेस बंद कर दो, पुलिस ऑफिसर ने कस्टम ऑफिसर को हुक्म दिया और इसने सूटकेस के ऊपर के ढकने को बंद करके इसे लॉक कर दिया। तब वजवार में खड़े लोग भी हैरान निगाहों से इस मंजर को देख रहे थे। चलो उठाओ ये सूटकेस और इन साहब के हाथों में हथकड़ियां लगा दो, ऑफिसर ने कहा। हथकड़ियां? वो शख्स अजा कर बोला। हाँ, आपका पासपोर्ट कहाँ है? ये है। इस शख्स ने अपना पासपोर्ट निकालकर पुलिस ऑफिसर के सामने कर दिया और पुलिस ऑफिसर ने इसे देखने लगा, फिर बोला, आप डेनमार्क से आए हैं? जी नहीं, एक सैयारे से आया हूँ, इस शख्स ने जवाब दिया। लगता तो यही है, लेकिन हम अब आपको दूसरे सैयारे पर ले जा रहे हैं और इस दूसरे सैयारे पर पहुंचकर आपको मजा आ जाएगा। वहाँ एक ड्राइंग रूम भी होता है और ड्राइंग रूम में जो कुछ होता है वो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तुम लोग वाकई जाहिल लोग हो, क्योंकि बड़े आदमी की कदर नहीं पाते। बेवकूफ आदमी, मेरा नाम पढ़ो, देखो मैं कौन हूँ, वो शख्स आया। पुलिस ऑफिसर ने पासपोर्ट पर इसका नाम देखा और फिर एकदम हंस पड़ा। बच करो यानी जादू कवा, मैंने कहा ना तुम जाहिलों को इस बात की तंगी नहीं हो सकती। अरे बेवकूफों, ये दुनिया की अजीम तरीन खोपड़ियां हैं, और मैं डॉक्टर विच करो इन पर तहकीक कर रहा हूँ। मैं इन्हें इस काबिल बना रहा हूँ कि ये अपनी तमाम अलमियत मुझे दे दें। मसलन ये सियासी शख्स मुझे बताए कि दूसरी जंग अजीम में इतने हिटलर के खिलाफ कौन सी हिम्मत अमली इख्तियार की थी। मगर जनाब कव्वे साहब इन खोपड़ियों में दिमाग तो है नहीं, पुलिस ऑफिसर ने हंसते हुए कहा। इनमें इतना दिमाग मौजूद है जितना तुम्हारी असल खोपड़ी में भी नहीं है। मैं इन्हें इस काबिल बना रहा हूँ कि मुझे अपनी तमाम तर तफसीलात बता दें। इनमें साइंसदान भी हैं जो अपने जहनों में अजीम तरीन फार्मूले लेकर मौत की आगोश में जाग हुए हैं। इनमें ऐसे सियासतदान भी हैं जो अपनी सियासत हकली हिकमत अमली मुझे बताएंगे। खौफनाक तरीन फार्मूले इन खोपड़ियों में मौजूद हैं। इनके अंदर मसनूई दिमाग डालूंगा, मशीनी दिमाग, जिससे ये इस काबिल हो जाएंगी कि अपने बारे में तमाम तफसीलात मुझे बता सके। समझ रहे हो ना मिस्टर गधे? पुलिस ऑफिसर ने एक लम्हे के लिए हाथ उठाया। वो गर्म दिमाग का आदमी था, लेकिन ये थप्पड़ शायद इसलिए रुक गया कि सामने एक गैर मुल्की था। आज तक हम सफेदी चमड़ी वाले को न जाने क्यों अपने आप से अफजल समझ रहे हैं। हालांकि ये पुरानी बात है, कसूर इन हुक्मरानों का था जो इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की येलगार नहीं रोक सकते थे। जब इसने आकर बरसगीर का कब्जा किया था, लेकिन इसके बाद वो हमारे जहनों पर गुलामी का गिलास चढ़ा गए। आज तक हमारे जहन सफेद चमड़ी वालों के खिलाफ कुछ करते हुए डरते हैं। ऐसी सूरत हाल अभी तक बाकी है। हालांकि कसूर हमारा नहीं था, हम अगर इस दौर में होते तो ऐसे इंडिया को अपने ऊपर काबिज ना होने देते। बहरहाल पुलिस ऑफिसर ने अपने साथियों को इशारा किया और एक पुलिस मैन ने हथकड़ी निकाली। ये हथकड़ी तुम मेरे हाथ में डालना चाहते हो? वज करो अजाई, हुई आवाज में बोला। हाथ आगे करो। ठहरो, कौन से हाथ में डालोगे हथकड़ी? सीधा हाथ आगे करूं? वज फिरो ने सीधा हाथ आगे किया, फिर दूसरे हाथ से अपने सीधे हाथ की कलाई पकड़ी और एक हल्का सा झटका दिया, जिसके बाद वो हाथ बाजू से उखड़ कर आगे आ गया। लो शौक पूरा करो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। करीब खड़े हुए लोगों के मुंह से आवाजें निकली थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर खौफ ज्यादा नहीं हुआ था। इसने कहा, तू तो हमारा हाथ मतलब ही है, अभी तो दूसरा भी है। वज करो हंसकर बोला। एक अजीब तमाशा लग गया था। घर बजवार में खड़े लोग भी जमा हो गए थे। कांस्टेबल ने डरते डरते दूसरा हाथ की कलाई पकड़ी और इसमें हथकड़ी डालने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे वो हाथ भी इसके हाथ में आ गया था। वो खौफ ज्यादा होकर दो कदम पीछे हो गया था। इसके बाद तुम मुझे फांसी दे दोगे, क्योंकि यही करोगे ना तुम। लेकिन अब कस्टम ऑफिसर ही नहीं, पुलिस ऑफिसर भी फटी फटी आंखों से इसे देख रहे थे। मसनूई हाथ लगाए तो जा सकते हैं, इन्हें जेम्बिश नहीं दी जा सकती। अब फिर तुम मेरी गर्दन काट दोगे, क्योंकि फांसी चढ़ा दोगे मुझे इन खोपड़ियों को रखने के इल्जाम में। लो ये गर्दन भी तुम्हारे सुपर्द करता हूँ। इसने सर को जोर से झटका दिया और इसकी खोपड़ी गर्दन समेत शानों से उखड़ कर नीचे जा गिरी। सर वजवा में खड़ी कुछ औरतों की चीखें उभरी थी और वो घबरा कर पीछे हट गई थी। लोगों ने एक बड़ा सा दायरा बना लिया, लेकिन पुलिस वाले और कस्टम वाले इंतहाई खौफजदा अंदाज में खड़े से देख रहे थे। इसकी खोपड़ी नीचे पड़ी हुई थी, चेहरे का रुख सामने की सिम थी था, और फिर इसकी आवाज नीचे खोपड़ी में इसके होठों नीचे भरी। बेवकूफों, इस सूटकेस में जो कुछ मौजूद है तुम इसे दुनिया का अजीम तरीन खजाना कह सकते हो। इनमें ऐसी खोपड़ियां भी हैं जिनमें न जाने कैसे कैसे राज पोशीदा हैं। लेकिन लेकिन तुम क्या जानो जाहिलो, तुम क्या जानो। मैं डॉक्टर विच करो यहाँ आया हूँ और इस शौक में आया हूँ कि यहाँ भी मेरी पसंद की कई खोपड़ियां मौजूद हैं। वो मुझे दरकार है, इन्हें हासिल कर लूंगा और इसके बाद अपने ये कीमती सरमाया लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। जाहिल कहीं के धड़ और बदन दोनों पांव पर रुका हुआ था। फिर न जाने क्या हुआ, सूटकेस काउंटर से ऊंचा हुआ और इसके बाद ऐसे नीचे लटक गया जैसे किसी ने इसे अपने हाथों में पकड़ा हुआ हो। विच करों के दोनों हाथ और खोपड़ी वहीं पड़ी रह गई थी और इसके पांव सूटकेस लटकाए आगे बढ़ रहे थे। सब परिवार में बहुत से आदमी ऐसे थे जो अपने अजीज और करीब की को खुश आमदीद कहने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इनमें जिसकी निगाह इस बगैर सर और बगैर हाथों वाले जिस्म पर पड़ी वो चीख मारकर पीछे हट गया। एक अजीब भाग दौड़, एक अजीब अफरा तफरी मच गई थी। बाहर बेशक बारिश हो रही थी लेकिन जिंदगी के मामूलात जारी थे। टैक्सी ड्राइवर मुसाफिरों के इंतजार में खड़े हुए थे। इनकी निगाहें बाहर आने वाले दराजों पर लगी हुई थी। फिर जब एक अजीब और गरीब मखलूक वहां से बरामद हुई तो वहां भी चंद निगाहों ने इसे देखा और कुछ ना कुछ समझ ना पाए। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर जिस ख्याल से इस मुसाफिर की जाने लपका था इसके करीब ही पहुंच गया और इसने इसे करीब से देखा। फिर इसकी गद्दी बन गई, वो वापिस पलटा तो ठोकर खाकर गिर पड़ा। गाड़ी की चाबी गेट के पास मौजूद थी, नीचे गिर पड़ी थी जो चंद लम्हों के बाद नादीदा हाथों से उठाकर अपने हाथों में ले ली। और फिर किसी एक और हाथ ने टैक्सी ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर इसे खड़ा कर दिया। चलो अपनी टैक्सी की जानिब चलो और ये चाबी संभालो। टैक्सी ड्राइवर घबराए हुए अंदाज में मुंह से अजीब और गरीब आवाजें निकाल रहा था लेकिन नादीदा हाथ इसे धक्का देते हुए आगे ले जा रहे थे। कहाँ है तुम्हारी टैक्सी? सुनो, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम भी मेरी तरह बगैर सर के हो जाओगे। चलते रहो। फिर टैक्सी ड्राइवर इसे अपनी टैक्सी तक लाया था। इसने इसे दरवाजा खोलने का हुक्म दिया था। सूटकेस टैक्सी के ऊपर हिस्से पर बने हुए कैरियर रख दिया। वो शख्स टैक्सी में बैठ गया। अब चलो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। एयरपोर्ट पर मौजूद बेशुमार अफराद बिल्कुल उस बाहर निकल आए थे और ये अजीब और गरीब मंजर देख रहे थे। टैक्सी स्टार्ट होकर चल पड़ी और थोड़ी देर के बाद इसकी रोशनी लोगों की निगाहों से उजल हो गई। टैक्सी ड्राइवर बेचारे का न जाने क्या हाल होगा जो एक बेसरार बगैर हाथों के इंसान को लिए हुए सफर कर रहा था। बारिश अब भी हो रही थी। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन का इंचार्ज फटी फटी आंखों से दो हाथ और इंसानी सर पर देख रहा था जो कागज में लपेट कर सामने रखे गए थे और एक अजीब सी बू फिजा में फैलने लगी थी। एयरपोर्ट पुलिस के अरकान ने ये चीजें अपनी रिपोर्ट के साथ पहुंचाई थी और थाने इंचार्ज की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बहरहाल इसने तमाम तफसीलात की रिपोर्ट तैयार की। जाहिर है ये केस मामूली नहीं था। दो इंसानी हाथ और एक खोपड़ी वहां मौजूद थी। चनाचे फौरन ही हेडक्वार्टर को इस सिलसिले में तफसीलात फराहम की गई और कुछ देर के बाद एक एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। खोपड़ी और हाथ पुलिस अस्पताल पहुंच दिए गए और यूं ये मामला बतरीज आगे बढ़ता गया। यहां तक के बाद महकमा सरगरा रानी तक पहुंच गई। वैसे मास्टर ग्रासानी में बेशुमार ऑफिसर थे और काम होता ही रहता था, लेकिन न जाने क्यों जहां भी कोई ऐसा उलझा हुआ मामला होता, सर अब्दुल रहमान की निगाह फेज ही पड़ती थी और फिर कैप्टन सयाद की शामत देखने के काबिल होती थी। इन दिनों सर अब्दुल रहमान ने इसे आजादी दे रखी थी। खासे अरसे से उस सेक्रेटरी का शौक पूरा कर रहा था। इस वक्त जो सेक्रेटरी थी वो जरा कुछ ज्यादा फयाज की निगाहों को भा गई थी। नाम सीमा था, वैसे भी खास खूबसूरती थी, इसलिए फयाज ने इसे अभी तक नहीं निकाला था और वो इस वक्त अपनी सेक्रेटरी को बिठा पुराने लतीफे सुना रहा था कि सर अब्दुल रहमान की तरफ से तलबी हो गई। खुदा खैर करे, फयाज ने घबराई हुई आवाज में कहा और सीमा हंस पड़ी। सर आप ना जाने क्यों डीजी साहब के सामने जाने से इतना घबरा रहे थे। इस मिसाल पर अमल करता हूँ कि घोड़े की पुश्त और अफसर का सामना हमेशा खतरनाक ही होता है, फयाज ने कहा। सर अब्दुल रहमान के कमरे की जानिब चल पड़ा। सर अब्दुल रहमान हज़्द मामूल अपनी मेज के पीछे कोई फाइल सामने रखे इसे पढ़ने में मसरूफ थे। फयाज ने सैल्यूट किया तो इन्होंने गर्दन झुकाए झुकाए कहा बैठ जाओ। इन्हें न जाने कैसे फयाज की खुशबू आ गई थी और वो समझ गए थे कि आने वाला फयाज के अलावा और कोई नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है वो फयाज का सैल्यूट पहुंचाते हों। फयाज आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ एहतियात से कुर्सी सरका कर इनके सामने बैठ गया। सर अब्दुल रहमान मुसलसल फाइल का मुताला कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद इन्होंने फाइल बंद करके निगाहें उठाई और फयाज को देखने लगे। मुझे हमेशा ही हसरत रही थी कि कभी तुम कोई केस लेकर खुद मेरे पास आओ और मुझसे कहो कि मैं इस सिलसिले में काम करना चाहता हूँ। सर वो बस ये ख्याल रखता हूँ कि आप यूं ना कहें कि फयाज तुम हर मामले में अपनी टांग अड़ा देते हो। सर अब्दुल रहमान के होठों पर देखते हैं मुस्कुराहट आ गई। तजुर्बेकार आदमी थे, फयाज की ये बात वाकई बड़ी मुजहमा खैर थी। इन्हें मालूम था कि जब कोई केस फयाज के हवाले कर दिया जाता है तो इसका वजन 2-4 पाउंड कम ही हो जाता है। हो सकता है वो ये दुआएं मांगता रहता हो कि शहर में कोई ऐसी पुरस्कार वारदात ना हो जिसमें से उलझना पड़े, बल्कि निचले महकमे ही छोटे मोटे वाकयात को निपटा लें। लेकिन फयाज जैसे आदमी की दुआएं भी पूरी नहीं होती थी। फयाज ने कोई खास जवाब नहीं दिया था। सर अब्दुल रहमान ने संजीदा होकर कहा है तुम्हारे लिए दर्द सरी पैदा होती रहती है, अखबार नहीं पढ़ रहे 2 दिन से। तब पढ़ रहा हूँ सर। कौन सा अखबार पढ़ते हो? कई। किसी खास वाक्य के बारे में इल्म है? सर सारे वाक्यात ही खास होते हैं। फाइल देखो, सर अब्दुल रहमान ने कहा। फयाज ने खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि वाकई इसने अब बाकायदगी से अखबार पर देखना छोड़ दिए थे। कोई भी वारदात होती थी वो सहम जाता था कि अब आई मुसीबत। बात ये नहीं थी कि वो काम करने से घबराता था, बल्कि इसकी अकल काम करने से घबराती थी और अमूमन वो तमाम मामलों में नाकाम ही रहता था। हाँ ये अलग बात है कि कभी कभी इमरान की खुशामद करने से इसे सरखुराई हासिल हो जाती थी, लेकिन अब इमरान भी इस कदर नखरेबाज हो गया था कि किसी काम के लिए इसके पास जाते हुए فیاض کو پریشانی ہوتی تھی، اور جب سے سلیمان کی شادی ہوئی تھی وہاں کی صورتحال اور بگڑ گئی تھی۔ اب اس فلیٹ میں دو کی بجائے تین مسکرے ہو گئے تھے۔ شہزادی نامی لڑکی بھی کم نہیں تھی، ایسی تیز ایسی تیز زبان کی، بس فیاض کی کھوپڑی ہی ناچ کر رہ جاتی تھی۔ سلیمان کے خوب عیش ہو رہے تھے، عمران اس کی خوب ناز برداریاں کر رہا تھا۔ بہرحال یہ تمام باتیں اس وقت سوچنے کی نہیں تھی، وہ تو شکر تھا کہ سر عبدالرحمان نے خود ہی فائل اس کی طرف بڑھا دی تھی، ورنہ فیاض نے تو اخبار دیکھنا چھوڑ ہی رکھا تھا۔ جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت سر پر کھڑی ہوئی ہے، اور یہ مصیبت بذریعہ اخبار ہی اس تک پہنچتی ہے۔ فائل اپنے سامنے رکھ کر اس نے اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ پہلے ہی صفحے پر اس نے جو تفصیل دیکھی اسے پڑھ کر اس کی کھوپڑی میں ستارے ناچ گئے۔ یہ وجکرو نامی ایک شخص کی انوکھی داستان تھی، جو دو رات قبل ڈینی ماں سے یہاں پاگیشیا پہنچا تھا، اور پاگیشیا کے ایئرپورٹ پر اس نے ایک انوکھا ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ اس ہنگامے کی مکمل تفصیل فائل میں موجود تھی۔ ایئرپورٹ پر پولیس اسٹیشن نے ابتدائی کاروائی کی تھی، اور اس کے بعد معاملہ ہیڈ کوارٹر کو پہنچا دیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں چند لوگوں کو اس کی تفتیش کے سلسلے میں مخصوص کیا گیا، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ رپورٹ ہی دے سکے تھے اور کوئی مؤثر بات نہیں کر سکے تھے۔ فیاض نے ورق الٹا وجہ کرو اپنے دونوں ہاتھ اور کھوپڑی ایئرپورٹ پر چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو ٹریس کر لیا گیا تھا اور اس سے اس کا بیان لیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی حالت خراب تھی، اسٹیئرنگ پر وہ قابو نہیں پا سکتا تھا۔ کافی دور تک ٹیکسی چلی، اور اس کے بعد پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی کہ ٹیکسی روک دو۔ ٹیکسی ڈرائیور کا تو دم ہی نکل رہا جا رہا تھا۔ آواز نے کہا کہ وہ بہت بزدل آدمی ہے، ایکسیڈنٹ کر دے گا، خود بھی مر جائے گا اور اسے بھی نقصان پہنچا دے گا۔ چنانچہ کوئی دو چار میل چلنے کے بعد ہی اس نے اپنا سوٹ کیس اوپر سے اتارا اور تاریکی میں سڑک کے نشیب میں اتر گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور اس وقت سے بخار میں مبتلا تھا، یہ ابتدائی رپورٹ تھی۔ دوسری رپورٹ میں کیمیکل ایکس ایمز کا تجربہ تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ وہ دونوں ہاتھ اور کھوپڑی کسی اصل انسان کی ہے۔ تینوں چیزوں کو کسی جیتے جاگتے انسان سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ بازوؤں کے آخری سرے پر اور کھوپڑی کی گردن کے پاس کے حصے پر جو خون جمع ہوا ہے وہ انسانی خون ہے، اور جس شخص کے بدن سے یہ تینوں چیزیں علیحدہ کی گئی ہیں وہ ایک ہی شخص کی ہے۔ ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق ایک جیتا جاگتا طاقتور اور تندرست انسان قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایمس کی رپورٹ تھی۔ اس کے بعد سر عبدالرحمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تینوں چیزیں لیبورٹری میں محفوظ کر دی گئی ہیں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ تم کوئی اندازہ لگا سکے ہو؟ سر صرف اور صرف ایک انداز، فیاض نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ کیا کیس بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے؟ پارٹ ون یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب عمران سیریز پراسرار دشمن کا بقیہ حصہ پارٹ ٹو میں سماعت فرمائیے۔